करा, लेकिन नहीं हुआ। खैर हम निकले पलट के आगे वापस, पलटे तो उतने में फिर एक गाड़ी उसी पार्किंग लॉट में आई, तो हम फिर रुके। तो बाहर निकल के आए तो फिर वही हुआ कि एक बूढ़े मर्द थे और सात खातून थी, और गाड़ी में कोई बैठा होगा ये अल्लाह आलम। इतनी तेज म्यूजिक, अब आप उनको जानते नहीं इसलिए आप किसी का सोच भी नहीं सकते, लेकिन जिस चीज ने इस वक्त मेरे दिल को इस तरह किया हुआ कि जैसे वो एक गला हुआ आम नहीं होता कि हाँ, इतना म्यूजिक तेज था। और वो बेचारे लुढ़कते हुए निकले बाहर। तो खैर मर्दों ने कहा कि हम इधर आए थे, तो उन्होंने कहा कि बात भी नहीं उनसे हो रही कि मैं सीधा अस्पताल से आया हूँ। और उनके साथ जो मिसेस थी वो बेचारी गाड़ी से नहीं निकल पा रही थी, वो और भी वो जरा 80 के तो वो 75 की होंगी। जितनी देर वो खड़े रहे जो भी बात हो रही, थर थर म्यूजिक था, और उनके यहाँ भी कट दिख रहा था, साफ लग रहा था ये हार्ट पेशेंट है। तो मेरा दिल इस तरह कटा, बल्कि उनको हमें देख के कहा पाकिस्तानी है, तो फिर उन्होंने उर्दू शुरू की, वरना देखने में वो बिल्कुल यहाँ का ही कल्चर लग रहा था। तो मेरा दिल फट गया कि 80 साल की उम्र हो गई, कोई इन तक नहीं पहुंचा, किसी ने इनको नहीं बताया, और ये जिंदगी के क्या मौत के दिन गिन रहे हैं। वल्लाही कहने अल्लाह ने भी कहा बस वो तो जी 80 साल के हैं, आप कोई पता नहीं कब। तो मैंने कहा कि अल्लाह एक क्यों नहीं हम इन तक पहुंचते जिंदगी में। मेरा दिल करे मैं उन सबको छोड़ू, मैं उन्हें आंटी से को, और आंटी बेचारी ने हमें देख के शायद डर गई या क्या, वो उन्होंने हमसे बात ही नहीं की ना, खौफजदा थी। तो मेरे दिल से मैंने कहूँ कि चले आए, मैं इधर जहां जा रही हूँ स्कूल चलते हैं। चोट पड़ी मेरे दिल पे बहुत। नीचे उतरी तो दो सिस्टर दिखी सोने पे सुहागा, वो सिस्टर जिनके लिए मैं तहज्जुदों में दुआएं मांगू कि ये जरूर आए, ऐसी लग रही थी। तो मैं समझी इनको ऊपर जाना है, वो कहती नहीं हम ऊपर से नीचे आए, हमारे बच्चे रो रहे थे। फिर तो मेरा दिल करे कि मैं फट फट के रो पड़ूं। यानी आप सोचिए कि हम सब छोटी छोटी बातों पे इतनी बड़ी बड़ी बातें छोड़ देते हैं, अपने अंदर दर्द पैदा करें। मैं तो कभी अपने आप को माफ नहीं करूंगी अगर मेरी गफलत से कोई बंदा दीन से दूर हो जाए, यकीन करें। थोड़े से कमेंट्स है आपके, पढ़ती हूँ, दिल का बहुत बोझ है दिल पे इस वक्त। ये लिखती हैं कि आज मैं बिल्कुल फॉर्म में नहीं थी, ना ही क्लास अटेंड करने की हिम्मत थी, मगर ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे नमाज कजा होने वाली हो। मुझे इनकी इस जुमले से बहुत खुशी हुई, मैंने इसको पहले भी पढ़ा। यकीन करें अगर आपने इस क्लास को नमाज नहीं बनाएगा ना, तो ये कजा ही हो जाएगी, फिर तो बस वो कजा उम्र ही बढ़ेंगे बुढ़ापे में जाके। बात का इजहार, जैसे आप में से कभी किसी को दिखाई होगी हमने जन्नत वाली दिखाई थी, स्टाइल वही है, लेकिन यानी उस लड़के के चेहरे पे मैं उस वक्त मैं पढ़ रही थी कि इंशाल्लाह मस्कनत अब चली गई है, हमारा यूथ जवान हो गया, अल्लाह की कसम। इतनी प्यार से उस बच्चे ने पढ़ी, मेरा दिल करे आपका हर बेटा इस्लाम के लिए यही जज्बे रखे। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो दूसरों को बता रहा है कि अल्लाह कौन है, पूरे इस्लाम को उसने एक पोइम में बताया। इधर सुनाऊंगी आपको, दिखाएंगे इंशाल्लाह, बस आपकी ये स्क्रीन फिट हो जाए इंशाल्लाह ताला। तो दुरीबत अलैहिम जिल्ला तो है, मस्कनत अब जा रही है, और ये बहुत जल्दी चली जाएगी जब हम चल पड़ेंगे आगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक हमारी जिंदगी के मकसद को अपनी मंशा के मुताबिक ढालने और हमें हिदायत याफ्ता गिरोह में शामिल होने की तौफीक दे, आमीन। मुझे ये बात बहुत, लेने वाले की बजाय देने वाले बनेंगे तो ही खैर होगी। दुआ करें हम सब ऐसे हो जाएं। लेना नहीं है, देना है। हमने इस्लाम से कुछ नहीं लेना, इस्लाम हमें बहुत कुछ देगा। हमने इल्म से कुछ नहीं लेना, इल्म हमें बहुत कुछ देगा। इसका करम है कि मैं इस कोर्स में हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाएंगे, इस्लाम में पूरे उतरे हैं, कोई भी ऐसी नेमत नहीं। या अल्लाह हमें नींद से बेदार कर दे, या अल्लाह हमारे दिलों को नरम कर दे, हमारे सीनों को कुशादा कर दे, और हमारे इल्म में इजाफा कर दे, नफे वाला इल्म दे, ताकि हमारी आने वाली नस्लों की इसलाह हो जाए। इन आयतों ने तो झंझोड़ के रख दी है, पता नहीं आप झंझोड़े गए हैं कि नहीं, मेरा तो अपना दिल पकड़ा रहता है। अल्लाह हमें अच्छे हुक्मरान दे और हमें अच्छी कौम बनने की तौफीक दे, आमीन। मैं इनकी इस दुआ को उलट के पढ़ती हूँ, तरतीब सही नहीं है इस कौम दुआ की। दुआ यह है कि अल्लाह हमें अच्छी कौम बना और फिर हमें अच्छे हुक्मरान दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आमालुकुम, आमाल जो हम करते हैं, आमालुकुम ओ मालुकुम, तुम्हारे अमल तुम्हारे हुक्मरान बन जाते हैं, जैसी कौम वैसे लीडर। एहसास हो रहा है कि अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी नेमत से नवाजा है इस कोर्स के जरिए, और जिस मकसद के लिए उम्मत मुस्लिमा को चुना, जिसको बनी इसराइल की तारीख पढ़ते हुए इन आशनाई हो रही है। दुआ है कि अल्लाह हमें इनकी तरह गुमराह ना करे, और जिस मकसद को वो पूरा ना कर सके, कहीं हमारा हशर भी उन जैसा ना हो जाए। आमीन तो कह दें। अल्हम्दुलिल्लाह कहने को हमेशा ही से हम अपने रब से मांगते हैं और उसी से आस लगाते हैं, मगर अपने दिमाग के शायद पीछे के हिस्से में लोगों से भी उम्मीद रखते हैं कि फलां वक्त पर मैंने इसका इतना और मेरे मुश्किल वक्त में इसने मुझे पूछा भी नहीं। है हमारी आदत, कहे ना लेकिन दिल के अंदर छुपा ये होता है, रोना ही आ जाता है ना जब कोई नाम है पूछे, तो फिर ही कहते हैं देखो मैंने इनके लिए क्या किया और इन्होंने मेरे लिए क्या किया, तो ये भी फिर समझे कि शिर्क है। या रब हमारे दिलों को इन फितनों से पाक करना, और हम मेरे और मेरे जैसे सब साथियों को भी। आमीन। अल्लाह ताला से अब ताल्लुक और मजबूत करना है। आज की आयतों ने इसलाह करना सिखाया, उम्मते मुस्लिमा बनने की कोशिश करनी है इंशाल्लाह। मकसद जो हम भूले हुए हैं इसको लम्हा लम्हा याद करना भी है, और इंशाल्लाह याद करवाना भी है। ये दूसरा दर्जा होता है ना, पहले खुद को याद रहती है चीज तो ही दूसरों को देंगे ना। बनी इसराइल और उम्मते मुस्लिमा का तकाबुल देखकर दिल में तड़प सी पैदा हो गई है, सबसे पहले अपने आप को बदलने की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तआला की नेमतों का शुक्र सही वक्त पर अदा करना है, इससे पहले कि बेहतर से अदना का सफर शुरू हो। कभी आप सोचें सही, यहाँ तो लगता है ना खाने पीने के मामले में सिर्फ ऐसा है, लेकिन अमली तौर पे आप देखें तो हर चीज में हम कितनी आला चीजें छोड़कर कितनी अदना चीजों के पीछे भागते हैं ना। अपने वक्त को देख ले, हमारा वक्त कितना कीमती है, लेकिन हम सिर्फ एक फोन कॉल पे को लंबा करते रहते हैं, नमाज का वक्त टलता रहता है। सच बताए ऐसा नहीं होता, नमाजें लेट होती, बेकार काम को बढ़ा रहे थे और ही साफ कर रहे हैं, जो साफ है उसको और साफ कर रहे हैं, रगड़ रहे, नमाज आगे चली गई, कुरान नहीं पढ़ते, बेकार चीजों में वक्त लगा हुआ है हमारा। हम इतना भी अपनी तबीयत पे नागवारी नहीं बोझ बर्दाश्त करते कि चलो कुछ भी नहीं, कुछ तो मिल रहा है, मैं बैठा ही रहूं, मैं ये काम करता ही रहूं। हम कहते नहीं, जब बहुत अच्छा कर सकेंगे फिर करेंगे, और वो फिर दिन नहीं आता। अल्लाह ताला ने हमें आखिरत के लिए पैदा किया, ये जहन में रखना है, ताकि सिर्फ दुनियावी चीजों में गुम ना हो जाऊं। असल मकसद दीनी इल्म हासिल करना है, ताकि आखिरत की तैयारी कर सकूं। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब के दिलों को खोल दे। आइए आज का अगला सबक शुरू करते हैं। नहमतुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, बल्कि 1 मिनट दीजिएगा, आप लोग भी खोल लें अपने नोट्स। نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير। اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اگلا سبق شروع کریں گے۔ ہمارا آج کا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 سے 71 تک ہے۔ सबक नंबर 9 है, आयत नंबर 62 to 71। वैसे मैं चाहूँगी कि हम इसको 72 तक करें, तो मैं दोनों नाम बोल देती हूँ, फिर इंशाल्लाह एंड पे हम इसको एडजस्ट करेंगे। महाराज का सबक 62 से 72 तक है, सूरत अल बकरा। आज के इस सबक का मेन थीम या मरकजी ख्याल क्या है कि अल्लाह सुबहाना ताला के हुक्म को सुनकर मुख्तलिफ रवैये जो कौमों के उभरते हैं वो क्या होते हैं। पिछली आयात में हमने बनी इसराइल की हिस्ट्री पढ़ी, और स्टिल हम इस सबक में भी कुछ चीज़ें इनकी पढ़ेंगे, लेकिन अल्लाह के अहकाम के मामले में यहूद के कुछ रद्द अमल थे, जिसमें से एक रद्द अमल हीला साजी का। हीला क्या होता है? सीधे सादे हुक्म को तावीलात के जरिए से बदल देना। ठीक है, यानी बात समझ आ रही है आपको, कहा कि पानी का ग्लास ले आए, सबको समझ आ रही है, लेकिन ना लाने का दिल हो तो उसमें इस किस्म के बहाने ढूंढना कि वो बात ऐसे लगे कि वो हमें कहा ही नहीं गया। दूसरी चीज है हुज्जतबाजी, और तीसरी चीज है सवाल जवाब। इंशाल्लाह अगली आने वाली आयात में हम इन्हीं सबको देखेंगे,
और खास तौर पे इस सबक की पहली ही आयत 62 से हमें मुसलमानों के सिर्फ खुद को मुसलमान कहने की बुनियाद पर जन्नत में जाने की जो ख्वाहिश है उसके ऊपर भी पानी फिरता हुआ दिखेगा। आयत पढ़ूंगी तो आप इंशाल्लाह उसको ज्यादा अच्छी तरह समझेंगे। आइए तर्जमे के साथ साथ रहते हुए इसके ऊपर चलते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اسی طرح یہود نصارہ اور صائبین یا صابئین، یہود نصارہ اور صابئین میں سے جو لوگ بھی اللہ پر ایمان لائے اور روز آخرت پر بھی ان کا یقین کامل ہے اور نیک عمل بھی کیے، تو ایسے ہی لوگوں کو اپنے رب کے ہاں اجر ملے گا اور انہیں کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ کسی غم سے دوچار ہوں گے۔ دیکھیے آیت شروع ہوتی انا سے، انا جو ہوتا ہے نا یہ شدت کے لیے ہوتا ہے، بے شک، اور انگلش میں انڈیڈ، ویریلی، یعنی یہ ہوگا ڈیفینیٹلی۔ کون؟ الذین آمنو، کون لوگ؟ جو ایمان لائے۔ یہاں لکھ لیجئے آمنو سے مراد کیا ہے؟ کچھ لوگوں کی ایک صفت کہ وہ ایمان لائے۔ آمنو یومنو ایمانن کا مطلب ہوتا ہے ایمان لانا، دل اور جان سے تسلیم کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لانا۔ تو آمنو سے آپ لکھ لیجئے یہاں مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے لوگ۔ الحمدللہ، کون لوگ ہیں؟ مصدقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جو اس حق کو تسلیم کرتے ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر تشریف لائے، ٹھیک ہے؟ اور اس سے مراد وہ پاک لوگ ہیں جو امت محمدیہ میں شامل ہوئے۔ حقیقت یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے وہ سورج کی روشنی سے بھی زیادہ روشن تھا، آج بھی ہے اور اس دور میں بھی جب اسلام آیا تھا۔ آج بھی جو لوگ حق پرست ہیں ان کے دلوں کو یقین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے تھے وہ بالکل سچا تھا، اور جس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے اس وقت بھی لوگوں کو پتا تھا کہ آپ سچے ہیں۔ جب مکی دور میں آپ نے دین کی دعوت کا آغاز کیا تو لوگوں سے پوچھا کہ تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو، تو لوگوں نے کیا کہا تھا؟ کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ بالکل اسی طرح سورۃ شورا کی آیت نمبر 126 میں آتا ہے انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واتیعونی، یقیناً میں تمہارے لیے امین رسول ہوں، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تو ایمان یا اسلام کیا ہے؟ ڈر اللہ کا، یہ دو لفظ لکھیے گا۔ اسلام کیا ہے؟ ڈر اللہ کا، اطاعت رسول کی، طریقہ رسول کا، اور قبولیت اللہ سے چاہیے۔ رسول بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک ماڈل ہمارے سامنے بنا کے پیش کر دیا جائے اور کہا جائے کہ اس کو فالو کرو۔ چھوٹی سی مثال دے دیتی ہوں کہ جب کبھی کوئی بلاکس بناتا ہے یا اینٹیں بناتے ہیں تو وہ ایک سانچہ بنا لیتے ہیں، اور اس سانچے کے اندر کچی مٹی، گارا، گھلی ہوئی چیزیں ڈال دیتے ہیں، پھر اس کو خاص طور پہ پکاتے ہیں، تو جب وہ نکالتے ہیں تو ہر اینٹ اس سانچے کے اندر فٹ ہوتی ہے پوری کی پوری۔ اگر کوئی حصہ خالی رہ جائے تو اس اینٹ کو ریجیکٹ کر دیں گے کہ یہ کٹی ہوئی ہے، اور اس سے باہر جو حصہ ہوتا ہے وہ سانچے کی وجہ سے نکل جاتا ہے۔ آپ لکھ لیجئے کہ سنت ایک سانچہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ہمارے عمل ڈالے جائیں گے تو وہ عمل صالح بنیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں بتا دیا گیا کہ لقد کان لکم رسول اللہ، سوری، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورۃ الاحزاب کی آیت 21 میں بھی آتا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا گروہ ان الذین آمنو کا وہ کون سا ہے؟ کہ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمان سمجھتے ہیں، اور صرف مسلمان نہیں سمجھتے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ دوسرا گروہ دیکھیے، پھر بات ساروں پہ اکٹھی کریں گے، والذین ہادو، और वो लोग जो यहूदी बन गए, नोट कीजिएगा लफ्ज, ग्रामर तो अरबी की नहीं, अभी आपको समझ आएगी ना, उर्दू में जुमला देखिए, और वो लोग जो यहूदी बन गए, ये नहीं कहा कि वो लोग जो यहूदी थे, ये लफ्ज एक तो आपको दलील बन के कह रहा है कि इनको यहूदियत का नाम अल्लाह ने नहीं दिया, इन्होंने खुद लिया, खुद ही बन गए। जैसे आज कुछ लोग वहाबी बन गए, कुछ लोग सुन्नी बन गए, कुछ हनफी बन गए, ठीक है, बन गए, ये बने हुए नाम है ना कि अल्लाह के दिए हुए नाम है। इसी तरह लफ्ज यहूदी एक सेक्टेरियन नेम है, फिरका वाराना नाम है, पीछे आप बार बार पढ़ते जा रहे हैं बनी इसराइल, आगे आप अहले किताब का नाम सुनेंगे, तो अल्लाह ताला ने इनको लफ्ज यहूदी नहीं दिया था। सवाल पैदा होता है कि ये यहूदी क्यों कहते थे अपने आप को? नंबर एक, यहूदा की तरफ निस्बत, जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पहले बेटे थे। बस कहते हैं कि ये हादा तहव्वदा से है, मुराद क्या है, इन्ना हुदना इलैक, आगे आप पढ़ेंगे इनका लफ्ज, यानी ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम तौबा करके आपकी तरफ पलटते हैं, यानी ये मुख्ती वजूहात है इनके यहूदी कहने की खुद को। और बाज कहते हैं कि ये हजरत मूसा की उम्मत का एक गिरोह था, मगर असल दीन को छोड़कर बिदात में पड़ गया, खुराफात में पड़ गया, गोया के अपनी मर्जी का दीन। और याद रखिए कि जिस दौर के भी मुसलमान अल्लाह के भेजे हुए दीन के मुकाबले में अपने मुआशरे का दीन बनाते हैं ना, तो उनके फिर इस तरह छोटे छोटे नाम पड़ जाते हैं, कभी रस्मों के नाम पे, कभी कुछ। तीसरा गिरोह देखिए, वन नसारा और नसरानी, नसारा नसरानी, नसरा यन शुरू से है। हजरत ईसा अलैहि सलाम नासिरा नाम के गांव में पैदा हुए थे, बैतुल लहम के पास एक जगह नासिरा, वहां से निस्बत की वजह से इनको नसरानी कहा जाता है, ठीक है, और नसरानी की जमा नसारा है। और इसी तरह इनको नसारा कहने की दूसरी वजह क्या है, ईसा अलैहि सलाम की इन्होंने दीन के मामले में मदद की थी, ठीक है। सूरत आल इमरान आयत 52 में आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, मन अंसारी अल्लाह, इनसे पूछा हजरत ईसा ने, मेरा कौन मददगार है अल्लाह के मामले में? कालल हवारी यू नहन अंसारुल्ला, हवारियों ने कहा कि हम हैं अल्लाह के मददगार। आमन्ना बिल्लाही, हम अल्लाह पर ईमान लाए। वशहद, आप भी गवाह रहिए कि बियन्ना मुस्लिमून, हम मुसलमान हैं। या नोट कीजिए, हजरत ईसा के दौर के नसारा अपना नाम क्या रखते थे? इन्ना मुस्लिमून, हम मुसलमान हैं। आज के नसारा खुद को मुसलमान कहते हैं। आपकी कभी भी किसी नॉन मुस्लिम से मुलाकात हो ना, इस्लाम पे बात करने से पहले आप उसके हाल हुलिये चेहरे मोहरे से कुछ भी लग रहा हो, ये ना कहा करे कि यू आर क्रिश्चियन, यू आर ज्यू, बल्कि क्या करे, यू आर मुस्लिम राइट, आई थिंक यू आर मुस्लिम। फिर वो कहेंगे नो आई एम नॉट मुस्लिम, तो बस बात शुरू कर रहे हैं आप उसी से कि यू नो मुस्लिम, हु इज द मुस्लिम, हु सबमिट टू गॉड, हु सबमिट एंड हु डू वट एवर गॉड डू वॉन्ट टेल हिम टू डू लाइक दिस। तो हर बंदा अपनी जात से मुस्लिम है। ये आयत का आप रेफरेंस नोट कर सकते हैं कि अपने दौर के जो हजरत ईसा के दौर के जो नसारा थे वो खुद को मुसलमान कहते थे, आयत 52 है सूरत आल इमरान की। तो गोया के ये नसारा थे, ये दोनों अपनी मर्जी के बने हुए नाम थे। अल्लाह ने हर दौर में एक ही दीन रखा, सूरत आल इमरान की आयत 19 में आता है, इन्नत दीन इंदल्लाहिल्लाम, दीन तो बेशक अल्लाह के पास इस्लामी है। तो ये जुमला आप सबके लिए आसानियों वाला है, हर दौर के नबी को मानने वाले लोग मुसलमान कहलाए, ठीक है। चले, 313 पैगंबरों का तो जिक्र सुनते ही है ना, 1,24,000 का भी फिगर चलता रहता है, हर दौर के नबी के ऊपर ईमान लाने वाला 1,000, 2,000, 1,00,000 जितने भी थे वो उस दौर के मुसलमान थे और वो जन्नत में जाएंगे। इसी तरह यहूद और नसारा जो हजरत ईसा और अपने अपने पैगंबरों के दौर में थे और उस दौर के नबी के दीन पे थे, वो सब जन्नत में जाएंगे। और अभी क्योंकि इस पे मौजू आना है आगे, इसलिए अभी समझ लें, हर दौर में अपने नबी की बात मानने वाले शख्स को मुस्लिम कहते हैं, लेकिन बाद में नबियों के बाद दुनिया में उनके जाने के बाद जब लोग अपनी मर्जी के नाम रख लेते हैं तो फिर ये शर्त नहीं रहती। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप देखिए कि नबी सल्लम के दौर में सब सहाबा किराम खुद को क्या कहते थे? मुस्लिम। आपको नबी सल्लम के दौर में लफ्ज़ अहले हदीस नहीं दिखेगा, अहले सुन्नत नहीं दिखेगा। आपको अल्लाह के नबी के दौर में हनफी, शाफई, मालकी, ब्रेलवी और इसी तरह से देवबंदी नाम नहीं दिखेंगे।
हर नबी के आन जाने के बाद ये सारे नाम पैदा होते हैं। इसी तरह हजरत ईसा के दौर में कोई ईसाई नहीं था, कोई नसरानी नहीं था। हजरत याकूब के दौर में, हजरत मूसा के दौर में कोई यहूदी नहीं था, सब क्या थे? मुसलमान थे। ये नाम इन्होंने अपनी मर्जी से चुन लिए। तीसरा गिरोह देखिएगा, बस साबेईन। साबेईन जो है ना, इसका वाहिद साबी है। साबी का लफ्जी मानी क्या होता है? अपने दीन को छोड़ने वाला, और एक दीन से निकलकर दूसरे दीन में दाखिल होने वाला। जब नया नया इस्लाम आया, तो जो शख्स नबी से सल्लम की दावत से मुतासिर होता और मुसलमान होता, तो इर्द गिर्द के लोग उसको कहते, अच्छा जी साबी हो गए हो। साबी का मानी क्या था? बेदीन। बस इस आज साबी को थोड़ा सा बदल के लोगों ने वहाबी बना दिया। ना तो वहाबी कोई ग्रुप है, कोई कल्ट है, कुछ भी नहीं। मैंने तो नहीं कभी किसी को वहाबी को देखा। कोई खुद को वहाबी कहे तो उसकी मर्जी है, मैं तो किसी वहाबी को नहीं जानती। लेकिन एक बात आपने भी नोट की है कि नहीं की? मैंने तो बहुत की है कि जहां कोई कुरान पढ़ने लग जाता है ना समझ के, और साथ ही हदीस को ले लेते हैं रेफरेंस में, कुरान और हदीस पे अमल करते हैं, तो मुआशरे के बाकी लोग उसको वहाबी कहने लगते हैं। हालांकि वहाबी कोई नाम नहीं है, बिल्कुल ये साबी का ही एक पैरोडी है। उस दौर में बाप दादा के तौर तरीके और उन नामों को छोड़कर, जब लोग सच्चे दीन पे आते थे, नबी के साथ मिलते थे, तो वक्त के दीन के लोग कहते, अच्छा जी तुम बेदीन हो गए। तो साबी या वहाबी का मानी एक ही है, बेदीन। लोगों ने खुद ही बना लिया, नस्बतें जोड़ दी। बहरहाल हुआ क्या कि साबी वो होते हैं जो एक दीन से दूसरे निकले। अब ये बहुत सारे साबी ग्रोह के बारे में तकरीबन 11 से 12 अकवाल आते हैं किताबों में कि ये कौन थे। कोई कहते हैं कि ये हजरत इब्राहिम के पैरोकार थे, कोई कहते हैं ये फरिश्तों को पूजते थे, कोई कहते हैं ये सितारों को पूजते थे, कोई कहते हैं कि कुछ भी था। लेकिन ये बात डन है कि अल्लाह ताला ने मुसलमान, यहूद और नसारा के साथ इनका नाम लिया, राइट? बड़े बड़े अधियान है ना, तो इसका मतलब कि अपने दौर में ये कोई बहुत बड़ा गिरोह था। लेकिन आज खत्म हो गया। आज पहले तीन गिरोह तो हमें दिखते हैं, लेकिन वो नहीं मिलते। खैर, चारों गिरोहों के बाद अब आगे बात बड़े गौर से सुनने की है। इसमें इंशाल्लाह आपके जहन में एक बहुत ही बड़ी हकीकत खुलेगी। वो क्या? मन आमन बिल्लाही, जो ईमान लाए अल्लाह पर, नंबर वन लिख लें, वल यौमिल आखिर, और आखिरत पर ईमान लाए, वह अमिल सालेहन, और अमल सालेह करे, फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, बेशक उनका अजर उनके रब के पास है। क्या अजर है? वला खौफुन अलैहिम, उन पर कोई खौफ नहीं होगा, और वला हुम यहज़नून, और न वो गमजदा होंगे। अब गौर करके देखे तो इस आयत का मेन थीम क्या है कि नामों से कुछ नहीं होता, खानदानों से कुछ नहीं होता, नस्ली तफाखुर या नस्ली बड़ाई का घमंड नहीं करना। असल चीज जो अल्लाह के यहाँ है ना, वो आखिर में आयत के मन आमन बिल्ला नंबर एक, वल यौमिल आखिर नंबर दो, वामिल सालेह नंबर तीन। ये तीन काम करने पड़ेंगे। किसको? अल्लज़ीन आमनु को भी, और नसारा को भी, और यहूद को भी, और साबियों को भी। इस आयत में इस खुशफहमी को दूर किया गया जो यहूद को थी कल, और आज हम मुसलमानों के। और वो क्या थी? अगले ही रुकू चंद के बाद आप पढ़ेंगे, भी अगले चंद लेसन के बाद आप पढ़ेंगे, और यहां भी आप समझ लें कि यहूद का ख्याल क्या था कि चूंकि हम नबियों की औलाद से हैं, नबियों की नस्ल से हैं, हजरत इब्राहिम की नस्ल से हैं, तो हम चुने हुए हैं। वी आर चोजन पीपल, नाम तो आपने भी सुना होगा ये, हम चुने हुए लोग हैं। इस बुनियाद पे वो कहते थे, किसी का खुद को यहूदी कहला लेना ही उसके जन्नत में जाने की दलील है। अल्लाह ने यहाँ ये रिजेक्ट कर दिया कि कल यहूद को अगर सिर्फ अपने नाम यहूदी पे मान था, और वो इस वजह से जन्नत में जाना चाहेगा, तो गलत है, रॉन्ग। आमना बिल्ला वल यौमिल आखिर, और आमिला सालेहन करना पड़ेगा। नसारा ने भी अपने दौर में सिर्फ खुद को नसरानी समझा कि अल्लाह ने अपना इकलौता बेटा हमारे पास भेज दिया है, तो अब हम उसकी बुनियाद पे जन्नत में, तो गलत है। बल्कि नसारा को भी आमना बिल्ला वल यौमिल आखिर वामिला सालेहन करना पड़ेगा, और साबियों को, और हम मुसलमानों को। आज के मुसलमान क्या कहते हैं? कुछ भी कर लो, तुम हो तो उम्मत मोहम्मदिया में से ना। हम कहते हैं तुम काफिर होके पीते हो, मुसलमान होके पियो ताकि जन्नत में तो जाओ। तुम काफिर होके जिना करते हो तो मुसलमान हो जाओ, फिर जो मर्जी करना, नबी आएंगे बचा लेंगे। अल्लाह ने आंखें खोल दी हम मुसलमानों की साथ में कि खुशफहमियों में मत रहना, कल यहूद और नसारा जिस खुशफहमी का शिकार हुए आज तुम उसके होगे, तो जो उनका इंजाम था दुरीबत अलैहि मुजिल्ल वल मस्कन वल बाव बि गदब इन अला गदब, आज तुम्हारा भी यही हाल होगा। ये आयत ना तो ईमान की बारीकियां बताने वाली है, ना ईमान की जुजियात बताती है, बल्कि ये आयत बताती है कि ईमान अमल में ढलता है तो कबूल होता है। कच्ची चीज को ही कबूल करता है। देखिए, अगर आपको गंदम के कच्चे दाने दे दिए जाए हाथ में, आप खाएंगे? नहीं, वो गंदम पकेगी, कुटेगी, पकेगी, रोटी बनेगी, या उसका दलिया बनेगा, या हलीम में डलेगा, कुछ मराहल से गुजरेगी, कहीं आग की भट्टियों पे दबेगी, कहीं कुटी जाएगी, फिर वो कबूल होगी। मुंह से जुबान से इस्लाम का नाम लेने वाले बहुत हैं, असल चीज अमल की है। अब एक छोटी सी बात देखने की है कि आमना बिल्ला वल यौमिल आखिर अमिला सालेहन तो कह दिया, नबी का जिक्र ही कोई नहीं। अब आपको ये सवाल खुद से सोचना चाहिए था, अगर मैं ये सवाल ना उठाती तो आपके जहन में उठना चाहिए था कि भाई इसमें अल्लाह के नबी का जिक्र क्यों नहीं है। तो जरा खोल के देख लेते हैं, आमना बिल्ला, अल्लाह पे ईमान, छोड़ दें इसकी बारीकी, मैनूना बिल गैब में हम थोड़ी बहुत बात कर चुके। वल यौमिल आखिर को छोड़ दीजिए, अभी चार दो सबक पहले ही हमने किया, ला तजजी नफ्सुन अन नफ्सिन, के आखिरत का सही कॉन्सेप्ट क्या है। आज बात करेंगे हम अमीला सालेहन पे। तो अमीला सालेहन कौन सा अमल होता है, लिख लीजिए कि इसकी दो शरायत है। लफ्ज अमल सवाले की पहली शर्त क्या है, और वो क्या है कि अल्लाह के लिए किया जाए। आसान लफ्जों में लिख लें, इखलास हो, खालिस दिल से, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से कबूलियत की उम्मीद पे कोई अमल किया जाए। बस आप नमाज सुबह की पढ़ के आए, अगर आपने अल्लाह से, अल्लाह के लिए नहीं पढ़ी ना, तो आपकी नमाज अमल सवाले नहीं बनेगी। ठीक है, एक तो है यानी नीयत, इखलास, अल्लाह के लिए लिल्लाहियत। अमल सवाले की दूसरी शर्त, कड़ी शर्त, किस्सत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हो। कोई अमल जितना मर्जी अच्छा हो अल्लाह के लिए किया जाए, इखलास भी हो, लेकिन तरीका रसूल का ना होगा तो वो सही कि वो अमल सवाले नहीं होगा। आगे इंशाल्लाह दूसरे बारे में लैसल बिर्रा 177 आयत पे आपको थोड़ी और डिटेल्स बताऊंगी अमल सवाले की, लेकिन यहाँ से इतना काफी है आपके लिए कि अमल सवाले के अंदर रसूल की तादाद इताअत मदद। और आज के दौर के यहूद और नसारा आमना बिल्ला करते हैं, वेरी गुड, मान लेते हैं, बिल वल यौमिल आखिर कहते हैं कि मरने के बाद जिएंगे, सब होगा, मान लिया। अमीना सालेहन का दावा अगर करेंगे तो उनको मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानना पड़ेगा। ठीक है, ये अमीना सालेहन आज भी मुसलमान होने की उनको दावत देता है। और यहाँ बात जो मैंने छेड़ी थी उसको समझ लीजिएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है, मुस्लिम में भी है, एक मेरे पास बुकलेट है, बुकलेट क्या यानी एक छोटी सी बुक ही बनी हुई है, पहले पांच पारों में अमूमन जो हदीसें नोट की जाती है ना वाली है, आप देखें अहदीस के मफहूम है पहले पांच पारों के। आप में से जिस चीज को चाहिए आप ऑर्डर दे दें, हम आपके लिए इसी तरह फोटो कॉपी है ये भी, ये आप देखें कि इसमें सारी हदीसें लिखी हुई है आयतों के रेफरेंस के साथ नंबर के, इसलिए बाज दफा मैं कोड पूरी कराती हूँ, बाज दफा नहीं कराती कि हदीस आप जल्दी में लिख नहीं पाते। तो जिसको चाहिए होंगे आप बुक स्टॉल पर बता दें, इंशाल्लाह एक वीक के अंदर हम आपके लिए कोशिश करेंगे तो लेंगे। इसी में से एक हदीस मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, क्योंकि आज मुसलमानों के दिल में अपनों से ज्यादा गैरों का दर्द है। आज लोग कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि यहूद और नसारा जन्नत में ना जाए, है ये क्वेश्चन। तो छोटा सा उसका एक अमल समझ लीजिए, वो क्या है कि नबी सल्लम ने फरमाया, ये सही मुस्लिम की रिवायत है और इस बुक के पेज नंबर 8 से मैं पढ़ रही हूँ, कसम है उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है, इस जमाने का कोई यहूदी या नसरानी मेरे बारे में सुने, यानी इसको पता लग जाए कि मैं मबूस हो गया, और इस पर ईमान ना लाए, रिजेक्ट कर दे। काफिर होता ही हुआ कि जिसको चीज पेश करो और वो रिजेक्ट कर दे, तो फरमाया कि वो जहन्नुम में जाएगा। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। जो नव यहूद और नसारा नबी सल्लम के दुनिया में आने से पहले थे ना, उनके लिए क्या शर्त थी कि अपने दौर की बात मान लो, और हर दौर के नबी ने अपने दौर के लोगों को ये कहा था कि अगर तुम्हारी जिंदगी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए तो तुमने उनकी तबाह करनी है। आज लोग इस आयत को इतना मिसअंडरस्टूड करते हैं, मैं हर साल जब भी पढ़ाऊँ माशाल्लाह तो इस आयत पे वो रेफरेंस कोट करती हूँ जो हमें चर्च में से आया था। एक दफा मस्जिद में थे हम अमेरिका में, तो एक खत आया बड़ा अच्छा चर्च से, और उसके अंदर लिखा हुआ कि वी आर मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस ब्रदर्स, एंड तुम्हारा तो अपना कुरान कहता है कि देखो देखो कुछ भी करो। अपेरेंटली ये आयत देखें तो इतना गलत इसका मफहूम लोग लेते हैं। इसी से तो वहदत अदियान बना ली लोगों ने, यूनि रिलीजन का कॉन्सेप्ट। क्या कहता है कि मंदिर मस्जिद उखड़ों भा, क्या कहते हैं मंदिर मस्जिद, और एक और शेर है क्या किसी को आता है, मस्जिद मंदिर गुन नहीं, यानी एक शेर है पूरा कि मस्जिद कह लो मंदिर कह लो गिरजा कह लो सब एक कोई गल है पंजाबी के, उखड़ों भागा ये सारे एक ही हैं।
आपने दीन इलाही का नाम सुना होगा, कितने लोग उसके बारे में कुछ जानते हैं? दीन इलाही, चंद लोग। अकबर बादशाह का नाम सुना होगा? हम और हमारे बच्चे, हमने अपनी दौर में जब कभी थोड़ी, मैंने हिस्ट्री पढ़ी बहुत थोड़ी है क्योंकि सारी जिंदगी साइंस पढ़ी, लेकिन जब बहुत छोटी क्लास थी तो हमेशा ये मुगलिया बादशाह हमें इनके नाम आते थे, और हमारे दिल में इनकी और टोपियों वाली तस्वीरें देख के बहुत ज्यादा इनकी पर्सनैलिटीज का खौफ है। आप पढ़ के देखें कि दीने इलाही जो अकबर ने इजाद किया था वो क्या थी? ताबील थी। उसने कहा कि 1,000 साल के लिए आए थे नबी सल्लम, दैट्स इट कवर्ड।
आज जैसे आप 1434 है ना, तो उस वक्त 1,000 साल हुए थे, आज से 400 साल पहले ये फितना उठा था। उसने कहा कि अब पूरा बदला जाएगा, नवाज़े माँ बादशाह अकबर को उसने खुदा का दर्जा दे दिया गया था, और उस वक्त सलीब की पूजा हलाल कर दी गई, शराब हलाल कर दी गई, सूद हलाल हो गया, और उसके फॉलोअर्स आप देखें मुसलमानों से ज्यादा हिंदू थे उन। आज के दौर में हमारी यंग जनरेशन को जिस फितने से बहुत केयरफुल होने का ना, वो यही फितना है कि आज कहते हैं पीस पीस पीस, अमन अमन अमन, प्यार प्यार प्यार। अब हमारी तौर पे बहुत मानती है इसको कि ना हिंदुओं को बुरा को, ना यहूद को, ना ईसाइयों को, ना काफरों को, उन्हें को जो तुम करते हो ठीक है कुछ ना को, लेकिन इसके बाद अगली बात पे तो चुप नहीं बनता रह सकता ना, कि फिर ये भी मानो कि जो अपने दीन पे अमल कर रहा है वो जन्नत में जाए। तो पहली बात यह कि जन्नत मेरा और आपका घर नहीं है, जिसका घर है वो जाने और उसके बंदे जाने। अल्लाह के नबी ने बता दिया कि जिस यहूद नसरानी तक मेरी बात पहुंच गई फिर ना माने, बस इतनी सी बात है। और आगे सूरत आले इमरान में ये मौजू बहुत आएगा। तो हमारे लिए इसमें क्या है कि आज हम मुसलमान खुशफहमियों से निकल जाए, अगर हम अपने ऊपर गौर नहीं करेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को नहीं अपनाएंगे, तो याद रखिए कि हमारे ऊपर भी कोई अल्लाह की रहमतें नहीं बरसेंगी। लग रहा है कि बरस रही है, ये कोई रहमतों वाली कौम का हाल है जो इस वक्त उम्मत मुस्लिमा का हाल है कि रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पे, बर्क गिरती है बेचारे मुसलमानों पे। इस वजह से ये जो अल्लाह ने वादा किया है इसमें कि फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, चलिए इसको आप आखिरत पर डाल लें, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो इस दुनिया का क्या आज मुसलमान का मतलब पुरसकून है? अमन में है मुसलमान, सुकून है मुसलमानों के नसीब में? वजह क्या है कि वो अमल सवाले नहीं है। देखिए कि कोई नेकी कितनी करनी है, कब करनी है, कब नहीं करनी, ये सब कुछ रसूल बताते हैं। इस पे बातें आगे बहुत होंगी, इसलिए मैं यहाँ आपको इतना ही देता चाहती हूँ। रसूल सिर्फ नमाज रोजा नहीं सिखाने आते, उसका रेशन प्रपोर्शन भी सिखाने आते हैं। रसूल ने बताया कि अल्लाह कौन है, कैसा है वो, मट्टी का, सोने का, चांदी का, अल्लाह नूरुस समावाती वाला, आप रसूल को बीच में से निकाल दें तो आप कह दो पत्थर को सजदा करो ये खुदा है, दरख्त को सजदा करो ये खुदा है। तो असल बात यह है कि बातों से कुछ नहीं होता। हमारे लिए इस आयत में यह है कि इस्लाम की दावत आम है, आलमगीर है, तमाम फिरके और टोले खुद साख्ता हैं, इनके साथ अपने आप को जोड़ना इस्लाम से काटना है। पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि मैं मुसलमान किसी और कुछ नहीं हूँ, चाहे कोई नाराज हो चाहे कोई खुश हो, कोई मसलक पूछता है मुसलमान, उसके बाद फिर मुसलमान, उसके बाद फिर मुसलमान, कुछ तो और कुछ तो और जी कुछ तो और ये कि मुसलमान मुसलमान हुआ सम्मा कुमुल मुस्लिमीन। अल्लामा इकबाल ने बड़े खूबसूरत तरीके से बात की थी इस पे, कहते हैं कि मनफत नफा, नफे को कहते हैं ना मनफत। अब तो हमारी उर्दू भी अच्छी नहीं रही ना, अब वैसे इस कोर्स में आपको एक फायदा होगा कि आपकी उर्दू थोड़ी बेहतर हो जाएगी। कहते हैं कि मनफत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक, यानी हम मुसलमानों का नफा और नुकसान एक ही है, हम सब ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी जो होते मुसलमान भी एक, ये करने की जरूरत है। आज आप देखिए कि हम अगर एक हो जाए ना तो दुश्मन हमसे लड़े डरे। कहते हैं कि फिरका बंदी है कहीं और कहीं और जाते हैं, यानी फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं? ऐसे ही लोग दुनिया में जीते हैं। आज जब तक इस जोंक को अपने साथ से नहीं उतारेंगे ना, जिसने उम्मत का खून निचोड़ा हुआ है, हम नेशन बन के नहीं जिएंगे। आज मुसलमान इसी वजह से जलील और ख्वार हो रहे हैं कि कुरान किसी को पढ़ना आता है कि नहीं आता, गम ये पड़ जाता है कि उसका मसलक क्या है। भाई कुरिया, और आप लिख के दीजिए जो भी कहना चाहते हैं, अपने कमेंट्स और सवाल लिखिए, फिर इंशाल्लाह आपको मौका देते हैं। कि आप देखिए कि आज जरा कुरान की दावत कोई देखता है ना, कहीं दिल जा रही है तो खुश होना चाहिए कि नाराज? बेटियों की इज्जतें बच जाएंगी तो खुशी की बात है कि नहीं? औरतें बेकार मशगूलों और शॉपिंग से बच जाएंगी तो खुशी की बात है कि गम की है? चार बहनें पढ़ रही हैं, अच्छे घरों में सो सो के बिस्तर तोड़ती थी, पढ़ ही रही हैं, फायदा है ना? लेकिन लोग कब फायदा महसूस करते हैं उसको? कि जब उसके साथ उनके फिरके और उनकी जमात का नाम लगता है। अल्लाह ताला हमें हर गिरोबंदी से आजाद करके कहता है, कल तुम्हारा अमल तुम्हारे सामने आएगा। जी सिस्टर फजिया, आप बात कीजिए प्लीज। देखिए अपना नाम कुछ भी रख लें, काम असलाफ वाले करें, लेकिन खुद को सलफी भी ना कहना है। जैसे मैंने आज लफ्ज बीच में एक दो बोले हैं ऐसे, मुझे पता है कि उनके अकायद बिल्कुल ठीक है, लेकिन मसला क्या है कि अपना नाम जब आप कोई रखते हैं तो दूसरा गिरोह भी हक रखता है कि वो भी अपना नाम कहे। बात वाजे जी? आप पीछे से हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, सूरज की आखिरी आयतें जाके पढ़ लें, जब वहां पहुंचेंगे तो तब आपको समझ आएगी कि इन 17 बारों ने क्या दिया। आगे चलते हैं बनी इसराइल की हिस्ट्री के कुछ और वाक्यात। वह इस अखस नमी साकुम, अब आप खुद को कहाँ ले जाएंगे? वादिये तीह में। वादिये तीह किधर थी? हमारे लेफ्ट हैंड पे। अब आपके मैप जहन में है ना, ये दौर किधर? राइट हैंड पे क्या था? फिरौन, मिस्र, उसका। ये मेरा स्टेज क्या है? दरिया कह लें, मुझे दरिया में बिठाया हुआ आपने। इधर कौन है? वादी अतीत था। अब बनी इसराइल को वहां कितने देर रखा गया? हजरत ईसा मूसा अलैहि सलाम ने उनको क्या कहा? बोलिए, सब बोल दें, सब मिलके बोले, जिहाद करना है। उन्होंने क्या किया? फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद मूसा कहाँ गए? तूर पे गए। क्यों गए? तौरात लेनी थी। क्यों गए वहां? वहीं क्यों नहीं मिल गई किताब? यकसुई, फोकस्ड होना, ठीक है। अब क्या हुआ? जब मूसा किताब लेकर आए तो क्या हुआ था? पीछे बछड़ा बना लिया था, बछड़े की पूजा करते देखा मूसा अलैहिस्सलाम ने, तो उन्होंने अपने हाथ से तख्तियां फेंकी। सूरत आराफ में पूरा वाक्य आएगा डिटेल से। तख्तियां सारी टूट गई। फिर बछड़े की पूजा करने वालों के साथ क्या हुआ? कत्ल, फक्तलु अनफुसकुम, मामला रफा दफा हो गया। अब मूसा ने वो किताब उठाई जो आई थी तो क्या कहा? आइए अब वो देखते हैं। वह इस अखस नमी साकुम, और जब हमने तुमसे पुख्ता वादा लिया। कौन सा वादा लिया? बस इधर इतना समझ लीजिए कि तौरात पर अमल का वादा लिया। किताब आई थी तो किताब पे अमल करवाना था ना। तो वह और इस, जब इसके अंदर लफ्ज उस गुरु शामिल होता है, याद करो। इंग्लिश में हम कहते हैं रिमेम्बर, हम बातें करते वक्त कहते हैं रिमेम्बर रिमेम्बर, तुम्हें पता वो हुआ था, याद करो। तो ये एक स्टोरी का अंदाज होता है और इससे अगले की बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होती है। मीसाक का कुम, तुमसे पक्का वादा। पीछे मैंने इसकी जिक्र भी कर दिया था, सूरह मायदा में डिटेल्स आएंगी इसकी, कि वादा था इनको कि किताबों को नाफिज करेंगे, नबी की इताअत करेंगे, तौरात को मानेंगे। और रफ़अना फ़ौकाकुम अत्तूर, और हमने तुम्हारे सर पर तूर को बुलंद कर दिया। ये तूर पहाड़ को ऊंचा करना क्या था? जब मूसा अलैहिस्सलाम वो बछड़े के मामले से फारिग हुए तो तख्तियां उठा ली, कहा कि अमल करो। तो कहा कि ये तो बहुत मुश्किल है, उफ ये तो टू हार्ड, बहुत मुश्किल है, हम तो नहीं मानेंगे। क्या करो? हमारे सामने अल्लाह ताला को दिखाओ के अरिन अल्लाह जहरतन, हम अल्लाह को देखना चाहते हैं। फिर क्या हुआ था? 70 लोग गए, उन्होंने जाके उससे भी बढ़ के मुतालबा किया, अल्लाह ने उन सबको मार दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह ताला ये क्या हुआ, ये तो मेरे पर कत्ल का इल्जाम लगा देंगे। नतीजा हुआ वो सारे जिंदा हो गए, सुम्मा बस ना कुम ला लकुम तश्करून। अब मूसा अलैहि सलाम उन सारे लोगों के साथ वापस आए जो भी लोग थे, तो बनी इसराइल को कहा कि ये किताब है, अल्लाह ने ये हुक्म दिया, इसको मानो। जब अहकामात उनको सुनाए तो कर गए, फिर भी फिर गए, कहने लगे उफ बहुत मुश्किल है, हमने तो सोचा था ये किताब बड़ी आसान होगी, इट्स टू हार्ड, वी कैन डू, वी कैन वॉक विद दिस, हम नहीं चल सकते, ये तो मुमकिन नहीं, ये नहीं, ये तो हमारी हमारे तो सर से गुजर जाती है, दिस एंड दैट। जू ही इन्होंने ये बात कही, वरफान फौकाकुम तूर, पहाड़ अपनी जगह से उठाया गया फरिश्तों के जरिए और इनके सर पे खड़ा कर दिया, और कहा गया खुजू मा आते ना कुम बी कुवा, पकड़ो कुव्वत के साथ जो हमने तुमको दिया, क्या तरत उसके कामात, वस्कुरु माफी ही, और गौर करो, नसीहत करो, तदब्बुर करो इसमें, क्यों, लाअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बचो। आप इमेजिन तो करें किस तरह से अल्लाह सुबहाना ताला ने इनके सर पे पहाड़ खड़ा किया, क्यों, अपनी कुदरत दिखाने के लिए। याद रखिए ये जबरी अहद नहीं था, फोर्स्ड कोई इनके साथ प्रॉमिस नहीं लिया जा रहा था, अल्लाह इनको अपनी कुदरत दिखाना चाह रहा था कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो आज जिस तरह इस पहाड़ को अपनी जगह से उठाकर बुलंद कर रहा हूं, इसी तरह तुम्हें भी जमीन से उठा के पटख के नीचे मार सकता हूं। जब ये अमल देखा सजदे में गिर गए। आज भी अगर किसी जीव को आप जाने तो उससे पूछे ना, तो रफाए अजाब का एक सजदा करते हैं, कैसे करते हैं, यूं सजदे में जाके ना तो ऊपर देखते हैं, एक नजर से ऊपर देख रहे होते हैं, खौफ ये था कि पहाड़ सर पे गिरना, इसको कहते हैं रफा, रफा मीन दूर करना, एक्सपेल द पनिशमेंट या टॉर्मेंट जो है या अजाब, उसको दूर किया जाए, उसकी तरफ अल्लाह ताला इशारा करते हैं कि तुम्हारे सर पे हमने तूर पहाड़ को किया, और हर पहाड़ को भी तूर कहते हैं, खास तौर पे सब्ज पहाड़ को, लेकिन यहाँ मुराद वो पहाड़ है जिस पे मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला से कलाम हुआ था, और कहा कि हुजू मा तईनाकुम बिकुवा, पकड़ो इसको। अब यहाँ पकड़ने से मुराद कौन सा है, टू ग्रैब के मानों में कौन सा पकड़ना है, बिकुवा इस पे अमल करना है, कुव्वत से मुराद के हर हाल में पढ़ना है, हर मौक, बीमारों को सेहतमंद हो, दुखियों के खुश हो, अकेले हो के लोगों में हो, मशरिक में हो के मगरिब में हो, जवान हो के बूढ़े हो, हर हाल में इस किताब पर अमल करो कुव्वत के साथ। हमने आज इसका क्या बना लिया कि कुरान को जोर मजबूती से पकड़ो और गिर जाए तो उसके वजन का आटा दे दो। सुना मैं आपने ये फतवा, पहले दौर में तो कुरान कोई किलो दो किलो का होता था, चलो आटा दिया तो किसी गरीब का फायदा हो, आज आपके हाथ में एक छोटी सी चिप हो ना तो वो नीचे गिर जाए तो आप पता है कि उस चिप में कुछ 4-6 कारियों के कुरान होते हैं, तो आप चंद औंस या ग्राम का भी कुछ हिस्सा आटा देंगे नहीं। यहाँ इशारा क्या है, आगे भी आएगी ये आयत दोबारा, कि कुव्वत से अमल करो मराजे के, आम जरा से मुश्किल हालात जिंदगी में आ जाए तो उसको छोड़ ना दिया करो। देखिए पहला मरहला तो ये होता है कि ये किताब हाथों में होती कोई नहीं, सच्ची जो बात है, हम में से बहुत सारे लोगों ने इस तरह टिश्यू पेपर की तरह इस किताब को पकड़ा हुआ था यूं, और जब कुछ पकड़ भी लेते हैं ना तो पकड़ते हैं, जरा सा फितना उठाना ये गिर गया, किसी ने बात कर दी, किसी ने तेवरी डाल दी, किसी ने कुछ कह दिया, छींक आ गई किसी को, किसी का मिजाज बिगड़ गया, कोई मेहमान आने वाला हो गया, खुद कहीं जाने वाले हो गए, बच्चे की मंगनी, बच्ची का रिश्ता, शादी ब्याह, इधर उधर, अल्लाह कहता है वस्कुरु माफी। याद रखिए कि किताब को जब तक मजबूती से नहीं पकड़ेंगे ये हमारे हाथ से फिसल जाएगी, ये आसान चीज नहीं है। हदीस में आता है कि जैसे सरकश ऊंट के हाथों से, सरकश ऊंट जो है ना वो रस्सी तुड़वा के भागता है, इस तरह ये कुरान हमारे जहनों से निकल जाता है। मेरे और आपके लिए अमल इसमें अपने लिए क्या है कि नियत करें हर हाल में मैंने इस किताब को लेना है। जैसे अभी यहाँ एक पर्ची मुझे आज सुबह दिखी कि मैं हज पे जाना चाहती हूँ, और अब आई वॉन्ट टू गो टू हज, डू दुआ फॉर वन मी एंड मेरे हस्बैंड। अगर ये जा रही है पहले से तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनका सफर मुबारक करे, काम करे, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आप लोग जो कोर्स कर रहे हैं ना, आपका एक दिन भी इतना कीमती है कि अगर आप इस साल हज पे नहीं जा सकते तो गम ना करें, आपको अल्लाह उसका बेहतरीन बदल दे रहा है। जो हज पे जाके अल्लाह से मुलाकात होनी थी उससे अच्छी तो कुरान पढ़ के हो रही है, और कहीं तो वहां से भी सिर्फ सोना चांदी खरीद के लाते हैं। तो इस किताब पे गौर करना है। यहाँ से ये भी पता चलता है कि किताबें गौर व फिक्र के लिए होते हैं। वज़कुरु का लफ्ज़ देखिए, ज़करा, यज़कुरु, ज़िक्रन, तिस्कीर, अल्लाह की तस्बीह के लिए भी आता है, हम्द बयान करने के लिए भी आता है, ज़कर शयुन, दिल में किसी चीज को याद करने के लिए भी आता है। ज़कर अल अमरा कहते हैं अच्छी तरह समझना और फहम हासिल करना। तो वज़्कुरु मा फीहा से क्या मुराद है कि इस तरह इस किताब का फहम हासिल करो जिस तरह करने का हक है। आज यही बात हमें कुरान में कही, सूरह ज़ुमर आयत 27 नोट कर लें, घर जाके आपने इसका तर्जमा लिखना है। वलकद दरबना लिलनास फी हाज़ल कुरआन मिन कुल्ली मसल, और हमने इस किताब में लोगों के लिए हर तरह की मिसाल पेश कर दी, लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि वो गौर व फिक्र करें, नसीहत करें। तो पता चला कि बगैर सोचे समझे पढ़ने वाली ये मिसाल नहीं है। हमारे यहाँ कैसे कुरान बगैर सोच समझ के पढ़ने वाली किताब नहीं है? अमूमन हम कैसे पढ़ते हैं? एक लफ्ज़ हमने सुना है, तोते की तरह पढ़ना। देखिए ठीक कुराना पढ़ रहे हैं ना तो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर उसको समझे बगैर पढ़ते हैं तो उसकी मिसाल ऐसे, इमाम गजाली का नाम आपने सुना होगा, वो इसकी एक मिसाल देते हैं। कहते हैं कि सोचो एक काका है, मालिक है, उसके चंद गुलाम हैं। अपने एक बाग की इसलाह और देखभाल के लिए उनको मुकर्रर करता है और उनको लिख के दे देता है कि ये तरीके अख्तियार करो कि इस बाग के अंदर कैसे काम करना है, अच्छी तरह करो, और अगर तुमने इस बाग को बहुत अच्छा रखा तो तुम्हें इनाम भी मिलेगा, अजर भी मिलेगा। लेकिन उन लोगों ने क्या किया कि वो बादशाह का लिखा हुआ या आका का जो लेटर था उसको बड़ा खूबसूरत सजाया सवारा लगा दिया कहीं भी, ना उसको गौर से पढ़ा ना उस पर अमल किया, और दीवार पे लगा दिया और बाग की उस तरह देखभाल ना कर सके। हुआ क्या? बाग तबाह हो गया, उसकी फसल खत्म हो गई, कुछ नहीं हुई। अब बताइए कि उनका जो बादशाह था, जो मालिक था, क्या वो खुश होगा इस बात पे? क्या आज हमने किताब के साथ ये नहीं किया? ताकों में सजाया जाता हूँ, हाँ, पढ़ पढ़ के सुनाया जाता हूँ। आज कुरान की वो माहिरुल कादरी की गालिबन नज़म है ना कि ताकों में सजाया जाता हूँ, पढ़ पढ़ के सुनाया जाता, किस बस में मेरी धूम नहीं, किस मसले में रख नहीं है। यानी इतना हम कुरान पढ़ते हैं लेकिन उसके ऊपर गौर व फिक्र कम करते हैं। तो याद रखिए कि कौमें जब किताब के ऊपर गौर व फिक्र छोड़ देती हैं, उसके मुताबिक अपने अमाल नहीं करती, तो उसके नतीजे में दूरी बतलैहिम ज़िल्ल वल मस्कना, और आखिर में जो कह दिया लअल्लकुम यत्तकून, ताकि तुम बच जाओ। इसको हाईलाइट करें, ये है आपके इस कोर्स का थीम। क्यों कुरान पढ़ रहे हैं आप? अभी तो पढ़ रहे हैं ना, सारा दिन आप देखिए 5-6 आयतों पे हम चलते रहते हैं, उसी की तजवीद, उसी का तर्जमा, उसी की तफसीर, उसी के कमेंट्स, उसी पे गौर व फिक्र। मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, और तकवा की तारीफ क्या है? याद हुई है? जिसके अंदर खुद को बदलने का शौक पैदा हो जाए, फिक्र करो, गम करो, हम क्या करते हैं, हम किस तरह करते हैं, यानी इसके मुताबिक अपनी जिंदगियां बसर करो। कहते हैं कि बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम से इसरार करते थे, कोई किताब हो, कोई हमें भी पढ़ाए, कुछ सोखने गौर करे, हम तरसे हुए हैं, फिरौन की गुलामी में आ गए, हर वक्त काम ही करते रहते हैं। लेकिन जब अल्लाह ने उनको किताब दी, किताब वाला दिया, तो उनको किताब बड़ी भारी लगी, फिर उसकी कमिटमेंट नहीं कर सके। याद रखिए कि अल्लाह से नेमते मांगना बहुत आसान होता है, उन नेमतों के तकाजे निभाना, इसमें बंदे बहुत सारे इधर उधर भिदक जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने इस तरह इनका मामला किया। सूरत अल अराफ में डिटेल आएगी इस वाक्य की, आयत 171 का तर्जमा आप जाके नोट कीजिएगा। वो इस नतक नल जबल अफोकहुम का नहुजुल्ला, कि जब अल्लाह ने इनके सर पर पहाड़ को एक साहिबान की तरह खड़ा कर दिया, और जब उनको यकीन हो गया कि इन पे गिरने ही वाला है, तो हुक्म दिया कि खुजू मा तईनाकुम बिकुव्वा, पकड़ो जो हमने तुमको दिए कुव्वत के साथ, और गौर करो, नसीहत पकड़ो इसमें जो है, ताकि तुम बच जाओ। हुआ क्या? अब हुक्म तो हो गया, लेकिन सुम्मा तवल्लै तुम मिन बादी ज़ालिका, फिर तुम फिर गए इसके बाद। कैसे? कुछ अरसा उस पहाड़ के सर पे खड़े किए जाने का खौफ रहा, ठीक हो गए, कोशिश की, लेकिन कुछ अरसे के बाद तवल्लै तुम वल्लयुवल्ली तवल्लिया, यानी पूरे एक बैग के सर भी को बैक साइड दिखा दी उसको, चल पड़े। फलौला फतलुल्लाहि अलैकुम व रहमतु, बस अगर उसका फजल और उसकी रहमत तुम्हारे शामले हाल ना होती, यानी अल्लाह ताला तुम्हारी इतनी खरमस्तियों के बावजूद तुम्हें बड़े मौके भी देता था, अगर उसकी ये रहमत तुम्हारे हाल ना होती, लौ ला, देखिए शर्त का कलमा है इसमें, जरूर होती, यानी तुम सबको अल्लाह ताला ने दिए ना होती तो क्या होती, लकुन तुम हो जाते, अलबत्ता तुम इसमें किसमें हो जाते, खासिरीन, नुकसान पाने वाले, लूजर्स वन। तुम बैंक करप्ट हो जाते, यानी पता क्या चला कि इस किताब से मुंह फेरने का इंजाम क्या है? खसारा, बैंक करप्सी, कुछ नहीं हाथ में रहता, खासिरीन, बिल्कुल तुम नुकसान करो। आज आप देखिए कितने ही लोग हैं जो कुरान से मुंह फेरते हैं, सिर्फ दुनिया के फायदों की खातिर ना। अल्लाह ताला कैसे उनके साथ ये बात करता है। तो यहां तक की जितनी आयतें, इसके ऊपर आप गौर व फिक्र कर लीजिए। तो अल्लाह सुबहाना तला ने हम सबको बता दिया कि हर बंदे की रूह से अल्लाह ने एक वादा लिया हुआ है, उसकी रूहों से, जिसको निभाना लाजिम है। जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं ना, तो उस वादे को दोहराते हैं, तजदीद ईमान होती है कि अब जिंदगी में अल्लाह और रसूल की अहकामात को समझेंगे। फिर इसके बाद आप देखिए कि जब हमने पाकिस्तान बनवाया अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह से लिया अहद किया था ना कि अल्लाह ये अर्द पाक है, ये अर्द मुकद्दस है, तेरी जमीन में तेरा कानून नाफिज करेंगे। आज हमने किस हद तक इसकी पासवानी की? 47 से लेके 13 आ गए हैं, 13 है तो मेरा ख्याल है कि 46 ईयर बन गए आज तक तो हमारा कानून, 64 ईयर्स, अभी तक हम अपना कानून नहीं बना सके। सड़कें क्या बनाएंगे, हॉस्पिटल्स क्या बनाएंगे, वो भी गैर ही आके हमारे मुल्कों में बना जाते हैं ताकि कुछ और शर्तें अपनी मनवा लें। तो सोचने की बात है, अल्लाह झंझोड़ता है, कभी फिर तूफान आते हैं, कभी जलजले आते हैं, ये असल में झंझोड़ होती है। जितना ज्यादा आज हम इस पे फिक्र करेंगे, आप देखेंगे कि उतना ज्यादा अल्लाह की तरफ से रहमत आएगी। यहां तक आप देखिए कि बनी इसराइल के नाते से हम सबको डांटा गया। हम बनी इसराइल के दौर में कल कहाँ तक पहुंचे थे? मैंने आपको जो सुनाई थी कहानी, हजरत दाऊद और सुलेमान का दौर कौन सा था? यूशे बिन नून के दौर के अंदर बैतुल मकदस फतह हो गया, गलबा हुआ, कितना साल रहा वो? 100 साल। उस 100 साल के बीच में क्या हुआ? हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान का दौर था। अगली जो आयत हम पढ़ने लगे, ये हजरत दाऊद के दौर की है। साथ साथ लिखते जाए, इंशाल्लाह आप देखेंगे बनी इसराइल की हिस्ट्री पूरी हो जाएगी आपको आयतों के साथ साथ। क्या हुआ आइए देखते। वलकद अलिम तुमुल्लसीना तदउ मिनकुम फिस्सब्ती, और तुम अपने लोगों का हाल तो जानते ही हो, जिन्होंने सब्त के मामले में ज्यादती की। फकुलना लहुम कूनू क़िरदतन खासीन, पस हमने इनसे कहा कि बन जाओ बंदर जलील, धुतकारे हुए। फिर क्या किया? फजालनाह नकालल्ली मा बैना यदैहा व मा खल्फहा, हमने इस वाक्य को मौजूदा और बाद में आने वालों के लिए इबरत का सामान बना दिया। और वह मौइज़तन लिल मुत्तकीन, अल्लाह से डरने वालों के लिए मौइज़त और नसीहत का वाक्य बना दिया। बड़ी शद्दोमत से ये वाक्य पेश किया जा रहा है। अगर आप देखें वाला कद, वाओ के बाद लाम और कद जो ना, ये शिद्दत के हैं, एग्जैजरेशन है, ताकीद है। अलिम तुम माजी की बात है, अली यार कहते हैं कि ये अपनी लाइटें भी रात को चला देते और अगले दिन तक चलती है कि कोई काम नहीं कर रहे, इनके नौकर भी कोई काम नहीं करते। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जब दौर था, ये उस दौर में वाकया पेश हुआ। हफ्ते का दिन इन्होंने खुद मांगा था ना, खुद मांग के जब बंदा अपने काम को ना निभा सके ना, ये बहुत ही ज्यादा इंसान के लिए तकलीफ का सबब होता है। खैर क्या हुआ कि एक बस्ती थी, समंदर के किनारे रहती थी। कोई भी उसका नाम है आप मिल जाएंगे, तफसीर में याद रखने की जरूरत नहीं। लेकिन बैतुल मकदस के पास ही एक बस्ती थी, वहां जो लोग रहते थे उनका काम क्या था कि वो मछलियां पकड़ते थे, यानी फिशिंग करते थे, और ये उनका माश था। अल्लाह का हुक्म देखिए कि अल्लाह ने इस माश में डाल दिया। जिस मछलियां नहीं पकड़नी थी, ये वाकया सारा डिटेल से हम पढ़ेंगे सूरह अल-अराफ में, बहुत डिटेल से है, कि उसी मछलियां यूं सर उठा के, शुर्रन सर उठा के देख रही होती थी। शायद उन बेचारियों को भी पता आज किसी ने पकड़ना ही नहीं हमने, तो अब कुछ दिन तो ये सब्र करते रहे, बर्दाश्त किया। लेकिन वो रिस्क सामने दिख रहे हैं, और पता चला के बाद आगे पीछे सारा सारा दिन मछलियां जाल लगाए बैठे होते, मछलियां नहीं मिलती। एक बात थी ना, सरेआम जाते बैठ के मछलियां पकड़ लेते, कह देते भाई नहीं सब्र हो रहा, हमारे हालात बड़े खराब है, गाहक आए सारे अभी हैं, सारे गाहक आते जुम्मे के वक्त, हम क्या करें। इन्होंने एक बहाना ढूंढा, किया क्या कि हफ्ते की रात को, यानी जुमे और हफ्ते के बीच की जो रात होती थी उसमें जाते, और दरिया के किनारे गड़े खोदते, डिक करते ऐसे खड़े से, और उसके अंदर जाल डाल देते। रात को पानी जब जोश में आता ना, तो पानी के साथ मछलियां भी उन घड़ों में आती, पानी वापस चला जाता और मछलियां जो थी वो उस जाल के अंदर फंस जाती। क्या होता कि ये सारा दिन इंतजार करते रहते, जो ही हफ्ते का दिन गुजरा तो ये वहां जाके अपना जाल निकालते और मछलियां बेचने पकानी शुरू करते। अब जाहिर क्या है, मछली पकड़ी है, अल्लाह ताला क्या कहते हैं, अब जरा आप इनके ऊपर अल्लाह ताला का गुस्सा और अल्लाह ताला का अताब देखिए कि वलकद अलिम तुम, मदीना के यहूद को अल्लाह ताला असल में मुखातिब कर रहे हैं, तुम खूब जानते हो, लजीना तदो मिन को, तुम्हारे बड़ों में से, तुम्हारे बुजुर्गों में से एक कौम थी कि जो मछलियों को देख कर ये सबर ना कर सके, और उन्होंने अल्लाह के हुक्म के मामले में क्या किया। यहां से आप देखिए जो मैंने शुरू में मरकजी ख्याल में लिखाया कि अल्लाह के हुक्म के मुकाबले पे हीला साजी, हीला समझते हैं, ट्रिकरीज, ट्रिक किया। लोग कहते भाई ये क्यों किया, ये क्यों, कहते नहीं हमने कुछ नहीं किया, देखो जाल तो हमने जुम्मे की रात लगाया था और मछलियां हमने इतवार को निकाली हैं। अल्लाह कहते फकुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिन, हमने उनसे कहा हो जाओ बंदर धुतकारे हुए। सिर्फ बंदर नहीं कि वो मासूम से, एप्स एप्स कहते हैं, क्या होता है एप्स, वो नहीं कि बड़े क्यूट से लगते हैं, ख़ासिन शक्लें इनकी इंसानों की थी, जो इनकी असल शक्लें थी ना वो बिल्कुल वही थी, लेकिन दुमे निकल आई और पीछे शक्लें उनकी बंदरों की बन गई। अल्लाह सुबहाना ताला ने इनको यूं पकड़ा। देखिए अल्लाह को गुनाहगार बंदा भी बुरा लगता होगा, लेकिन बहानेबाज और चलाकियां करने वाला, युखादिउनल्लाह आमनु, ये निफाक है। अल्लाह को इस पे इतना गुस्सा आया कि अल्लाह ताला ने उनको बंदर बना दिया। कहते हैं उनकी अकल इंसानों वाली थी, शक्ल बंदरों वाली थी, गोया कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म को बदला, अल्लाह ने उनकी शक्लों को बदला। आप महसूस कर सकते हैं कि अल्लाह ताला का मामला बंदे के साथ बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे बंदा होता है। अब आप सोचिए कि इस बात पे आके कितने ही लोग बहुत सारी बातों में पड़ते हैं, कुछ कहते हैं ये वही बंदर हैं जो आज है, तो इसका जवाब है कि नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आपसे भी ये सवाल किया गया था, तो आपने फरमाया कि जिस कौम पे अल्लाह का अजाब आता है ना, वो 3 दिन से ज्यादा नहीं जिंदा रहती, वो बंदर, और तो ये बंदर पहले भी थे आज भी, इनका उससे ताल्लुक नहीं है, ये एक वक्ती तौर पे अल्लाह ताला ने रखा। उन्होंने अल्लाह के हुक्म को बदला, इरादा था, इख्तियार था, लेकिन इंसानियत के मुकाम से गिर के हैवानियत की सतह पे आ गए। अब देखिए कि जानवर की जिंदगी क्या होती है, बतन फर्ज और खाना पीना, जानवर या तो खा लेते पी लेते या सेक्स। इंसान जब इन कामों के लिए अल्लाह के हुक्मों को तोड़ता है ना, तो वो भी जानवरों से नीचे है। अल्लाह ताला कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने तुम्हें वलकद खलकनल इंसान फी अहसन, लकद खलकनल इंसान फी अहसन तकवीम सुम मरदद ना हुस्फुल साफिलीन, अल्लाह का हुक्म तोड़ा पीछे हो गए, अब इनको अल्लाह ने बंदर बनाया। आगे हम पढ़ेंगे कि 3 गिरोह हो गए थे, एक वो जिन्होंने ये काम किया, दूसरे वो जिन्होंने रोका, और तीसरे वो थे जिन्होंने कहा नहीं जी चुप करके बैठे रहो, हम क्यों बुरे बने। ऐसी रिश्तेदारियां टूटती हैं। फिर जब अजाब आया ना, सिर्फ वो गिरोह बचाया गया जो रोकते थे, और जिन्होंने किया ये काम और जिन्होंने नहीं रोका कि नहीं नहीं भाई फिर ऐसे तो नहीं होता ना, अब दीन इतना तो नहीं सिखाता कि रिश्तेदारों से लड़ाइयां लेते रहो, वो भी बंदर बन गए। और जो लोग मना करते थे ना, उन्होंने अपने और इनके बीच में एक दीवार खींच ली थी, कि भाई नहीं, कल तुम पे अल्लाह की पकड़ाई तो हम बचेंगे। और वो दीवार के पीछे से कोई निकल ही नहीं रहा, सारा दिन इंतजार करते रहे। जब दीवार से पलांग के देखा तो सब की बंदर थे, और कहते कि उनकी आंखों में आंसू थे। ये जाके उसके सामने बूढ़े जवान औरत मर्द का फर्क भी कहते हैं बंदरों की शक्लों से पता चल रहा था। और ये लोग जाके फिर उनसे पूछते थे कि क्या हमने तुम्हें नहीं कहा था, तो वो यूं सर हिलाते थे कि हाँ। जाहिर बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करते हैं कि क्या हुआ, देखो देखो मछलियां पकड़ी हैं तो बंदर बना दिए गए, शराब तो नहीं बेच रहे थे, कुछ सुअर का गोश्त तो नहीं खा रहे थे। लेकिन याद रखिए, ये मछलियां पकड़ने पे नहीं, हीला साजी पे। क्या आज मुसलमान का भी यही हाल है? अल्लाह की कसम खा के कहूं कि जायज काम करने वाले नेकियों के काम करने में भी इतने हीले बन जाते हैं कि अल्लाह की पनाह के हलाल काम, हलाल माल हराम हो सकता है। और आज हम मुसलमानों में तो ऐसे भी दीनदार आ गए कि जुर्रत के साथ उन्होंने अबवाब हीले के नाम पे किताबों में लिखे हुए। आप पढ़ के देखें, हीलों का बयान पूरा एक टॉपिक है फिक के नाम पे, जो लोगों को पढ़ाया जाता है। हीला बना लो, मसलन हीले के आप यहूद के बारे में आता है कि इनके अंदर हुक्म क्या था कि इनकी औरतें अपने सर के बाल ना दिखाएं किसी को, जैसे मुसलमानों के हुक्म है, ये सारे इनकी औरतों के भी थे। तो इनकी औरतों ने क्या किया, अपने सर के बाल शेव करा दिए और वेट्स लगा ली, कहा देख लो हमारे बाल तो नहीं है। ये है हीला, मुसलमानों ने कुछ कमी नहीं की। जकात किस माल पे होती है, जो आपके से 1 साल रहे, 1 साल रहे। मौलवी साहब के पास जाते हैं, मौलवी साहब जेवर तो इतना ज्यादा है इसकी जकात, और वो फिर पाकिस्तानी रुपए में जाती है। कोई हीला सिखा दे, क्या करो, कोई बात नहीं, हीला मिल गया। आपके है ना जेवर, मिसाल है कि आप माँ बेटी हैं, आपका जेवर है ना, आप ऐसा करें कि जनवरी में आपने लिया था, नवंबर या दिसंबर के करीब आप ये सारा जेवर पकड़ के ना अपनी बेटी को, कि बेटा मैंने तुम्हें दे दिया तोहफे में। अब आप चूंकि 1 साल से पहले दे चुकी, आप जकात से माफ हो गई, इसका तो अभी शुरू हुआ है ना। अब नवंबर के बाद दिसंबर इसका है, जब 2-4 महीने गुजर जाएंगे फिर कहेगी अम्मा मैं नहीं रखती जेवर, अपना वापस लो, जकात माफ। ये अफवाह है उलमा के दिए हुए, ये है हीला साजी। डोरियां मोती तक काट करके देखते हैं, नया सोना और पुराने का रेट तोड़ के अल्लाह को हम देते हैं। हमें अल्लाह ने क्या देना है, हमें अल्लाह वही देगा जो हम अल्लाह को देंगे। उतरन देंगे अल्लाह उतरन देगा, टूटे रोते दिल से देंगे रोते दिल से देगा। अगर अल्लाह के साथ खुले सौदे कर लेंगे फिर देखें अल्लाह आपको, आपकी दुनिया जैसी बनेगी, आप तो उसका अंदाजा कर ही नहीं सकते, आखिरत तो पता नहीं। फलाफी, आज का मुसलमान ये नहीं समझा, किसी से बात हो रही है कि आपको क्या पता कि यहाँ क्या हालात हो रहे हैं, ये है वो है, जॉब वाला तो बंदा आज गुजारा ही नहीं कर पाता, वो तो किसी और रंग में सुना रहे थे अपनी बात, किसी के साथ ऐसी बात चल रही थी तो मैं कहीं और पहुंची हुई थी कि उम्मते मुस्लिमा तेरे साथ ये क्यों हुआ, तू क्यों रुल रह पड़ी, तेरे अंदर क्यों ये दुख है, तू क्यों ऐसे है, तू वैसे क्यों है, मकसद को भूले मैं ये फकर। कल सुनाया था ना, दूरी बतलाई मस्कना तो गुरबत है, ये कभी हो नहीं सकता कि सच्चा मुसलमान और वो गरीब हो, नामुमकिन है। यानी वो गुरबत नहीं होती कि जिसमें रोता ही रह जाए हर वक्त की फिक्र ही पड़ी नहीं, ये बिल कहाँ से जाएगा, इसकी पेमेंट किधर से होगी। कहीं आज भी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि आपको क्या होता है मुसलमानों ने जिन्होंने घर लिए हुए उनके साथ क्या मुश्किलें पड़ी हुई है, ये तो सारा कुछ अब छूट रहा है और बंद हो रहा है तो ये खराब है। तो अल्लाह पूछता नहीं कि मुसलमान सूद में पड़ता क्यों है, ये हीले नहीं है क्या, मशरिक में रहते हो तो सूद नहीं, मगरिब में तो सूद है, यहाँ मशरिक में सूद है तो मगरिब में कोई नहीं है देने की जरूरत, कोई बात नहीं, एक घर ले लो, क्या ये हीला नहीं है, मस्जिद ले लो दीन के नाम पे सूद की। बोला ये आज मुसलमान ये बातें समझ जाएं, मैं कहती हूँ ये आयतें ऐसी है ही नहीं कि हम इनसे ऐसी गुजर जाएं। अल्लाह के नबी ने कहा कि जो यहूद के साथ हुआ ये मेरी उम्मत के साथ भी होगा। आप सूरत मायदा आयत 60 में जाके पढ़ेंगे, मल्लानहुल्लाह, अल्लाह ताला फरमाते हैं जिस पर वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की, इन पर गजब हुआ और इनमें बाज को बंदर और सुअर बनाया गया। ये बंदर का वाकया तो इधर आया है, वहां जाके अब सुअर बनाने का वाकया भी पढ़ेंगे सूरत मायदा में। क्यों, वजह क्या है, उलाएका शर मकान, ये बदतरीन लोग मुकाम के एतबार से और सीधी राह से बहके हुए थे। तो क्या आज का मुसलमान नहीं बहका हुआ, कौन सा, मैं कहती हूँ हम तो बड़े बड़े हाथी निकले हुए हैं, और किसी दीनदार का मच्छर नजर आ जाए तो कहते हैं ये बताएं ये जायज है, इसकी इजाजत है, और हम दीन के नाम पे क्या करें, दुनिया के नाम पे क्या करें। तो हर एक को सोचना है,
आज मैं और आप हम औरतें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें माली मामला से आजाद किया हुआ है। हम में से किसी को परवाह नहीं है क्या कमाए खाए, लेकिन अपने घरों में जो रिस्क आता है उस पर नजर रखें। शोहर क्या लाते हैं, बेटे क्या लाते हैं, भाइयों के घरों में क्या आ रहा है, पूछिए ये कहाँ से आया। इतने लूप होल्स हैं, आप जो बिजनेस माइंडेड लोग हैं जिनके बिजनेस करते हैं, अल्लाह की बना कई काम है। जॉब वाले का तो एक दो शोषण है कि काम नहीं किया जाके पैसे ले लिए, काम वक्त पे नहीं किया लेकिन बहाना बना दिया, लेकिन जो अपने काम करते हैं उनके लिए तो अल्लाह की बना, ये तो अंदर का एक
पतला सा एक ढाल है, तलवार है, उस पर ही आप बचेंगे वरना नहीं बच सकते। अल्लाह के नबी ने फरमाया एक वक्त आएगा कि मेरी उम्मत के भी गले में ऐसी चीजें जाएंगी चाहे वो धुआं बन के जाए। तो हर एक सोचे, और याद रखिए इज्जत तब है जब अल्लाह का हुक्म माने, नहीं मनता तो सूरत अल अराफ आयत 179 में अल्लाह ताला कहते हैं उलाई का कल अनाम बल हूं बदल। तुम बंदर की बात करते हो, ये तो चौपाइयों जैसे हैं, बल्कि नहीं, ये तो उससे भी गए गुजरे हैं। और फजल ना नकाल लिमा बैन यदई हवमा खल्फा, इसको इबरत, अल्लाह चाहता तो सबको मार देता, बंदर क्यों बनाया ताकि इबरत लो। बाज कहते नहीं, बंदर नहीं बने। आप आज के दौर में एक बड़ा बहुत बड़ा ग्रुप आपको दिखेगा मौजज़ों का इनकार करता, मैं नाम लूँ तो आप परेशान हो जाएंगे। बड़े मारूफ दीनदार लोगों में आपके इर्द गिर्द में जो यानी मारूफ नाम है आज के दौर के दीनदारों, उनमें से कहिए क्या कायद है। हम हिस्ट्री में ऐसे ऐसे नाम पढ़ते हैं जिनके नाम मेराहले के बुजुर्गाने दीन के नाम पे हम पढ़ते हैं, उनमें से एक ऐसा नाम है कि जो गिरोह नहीं जो नहीं मानता मौजजात को, कहते नहीं, बंदर हाउ इज इट पॉसिबल। हाँ बस वैसे ही उछलने कूदने लग गए थे। तो बताइए अगर वैसे ही वो बंदर ही बंदर दूसरे थे या उछलते तो उसमें इबरत क्या थी। इबरत बनी, हम अल्लाह के हुक्म के साथ जो करते हैं अल्लाह ताला हमारे साथ यही करता है। वह मौइज़तु लिल मुत्तकीन, हाँ मुत्तकी नसीहत लेता है, वास दिल को नरम करने वाली बात। ये कुरान पढ़ना कोई मुश्किल है? 5 मिनट में आपको दो आयतें पढ़ा दें, आधे घंटे में पूरा सबक पढ़ा दें, लेकिन सबसे मुश्किल मौइज़ा है, दिल की नरमी, दिल तोड़ने हैं। हर एक अपने अपने सोर्स ऑफ इनकम को खुद चेक करे। मैं ये नहीं कहती कि अब जजमेंटल और क्रिटिकल होके घर जाते ही मर्दों के सर पे सवार हो, लेकिन समझ से, तरीके से। और याद ये भी रखिए, जिस दिन आपने मर्दों के सोर्स ऑफ इनकम पे बात की उस दिन अगले दिन हो सकता है वो आपको आने ही ना दे। इसलिए हिकमत से, सच बात है, ये हंसने वाली बात नहीं है। सबसे ज्यादा औरत को गुस्सा आता है जब उसके बच्चों और उसके घर पे कोई बात होती है, और मर्द को गुस्सा आता है जब उसके सोर्स ऑफ इनकम पे बात होती है, क्योंकि वो तो कहते हैं आपको क्या पता हमारी मजबूरियां, फिर खर्चे भी तो इतने हैं, फिर हम क्या करें, फिर कहाँ से खाओगी। तो हलाल पे रहना है, अल्लाह उसमें बरकत देगा। मैंने नहीं कभी सच्चे मोमिनों को रोते देखा, हो ना हो वो दोनों हाथ में खुश होते हैं। ये तो नहीं कि करोड़पति हो जाते हैं, लेकिन दिल में बड़ा कनात और सुकून होता है। तो वो माल, वो कहते हैं ना कि गुलाम इकबाल का एक शेर ना कि आती हो जिस रिस्क से परवाज में कोताही, उस रिस्क से मौत अच्छी। कि जब रिस्क माल दौलत इतना आगे उसी के चर्चे, उसी को गिन रहे हैं, उसी के बढ़ाने में लगे हुए, और परवाज यानी मकसद भूला हुआ है, आज उम्मत मुस्लिमा को भूला हुआ है। हमारे ब्रदर्स, हमारे मुसलमान भाई जो है वो वाकई इस वक्त काबिले रहम है, अपनी सात पे शायद 100 भी नहीं लगाते होंगे महीने का, लेकिन उनको हजारों कमाना है, क्योंकि कितने बिल हैं जो उनके दिमागों पर चढ़े हुए हैं। आज हम भी तो हो गए लन नस्बिरता मिन वाकिन, नतीजा क्या हुआ कि हम इस तरह की बातों में चलते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमें हीलों बहानों से बचा ले। हम सबको इसमें फिक्र करना है। और एक बात याद रखिएगा, जब कोई काम कोई चंद लोग करते हैं ना, एक दो फ्यू इंडिविजुअल्स, अल्लाह कहते इट्स ओके नो प्रॉब्लम, ये तो होता ही है, लेकिन जब कोई कौम पूरी कौम का शार बन जाए ना, तो फिर अल्लाह नहीं छोड़ता। इस पे एक शेर भी है ना, किसकी तकदीर में महकूमी और मजलूमी है, यानी इस इंसान की तकदीर में महकूम यानी गुलाम बनना और मजलूम ही बनना है। कौम जो कर ना सकी अपनी खुदी से इंसाफ, खुदी क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का सिर्रे नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह। फितरत अफराद से अगमास तो कर लेती है, यानी फितरत आंखें बंद कर लेती है जब अफराद कुछ करती है करते हैं, कभी करती नहीं मिल्लत के गुनाहों को माफ। तो आज आप देख सकते हैं कि मुसलमानों का हाल क्या, क्योंकि जब कोई काम बहुत ज्यादा होने लगता है ना, तो उसके ऊपर फिर लोग जो है वो ये सोचते हैं कि अब सब कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। कितने लोग हैं, सब लेते हैं इंश्योरेंस, सब लेते हैं घर, सब करते हैं, तो अल्लाह कहता है कि सब जो भी करते रहे तुम उनको ना देखो। तो ये बनी इसराइल का वो रवैया था जिसपे आज हम सब मुसलमानों को भी गौर व फिक्र की जरूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारी आंखें खोल दे, यकीन करें आंखें खोलने की जरूरत है। कोई बात आप शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं।
जी आप प्लीज ऑनलाइन वाले भी लिखे। जी बिल्कुल, आप देखिए कि मर्द कमाते किसके लिए हैं, बीवी बच्चों के लिए कमाते हैं ना। आप कहते कि मैं इतने में खुश हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह इतने खामोश तरीके से आपके घरों में ये दीन जाएगा, आपके सारे मर्द खुद कह देंगे कि हमारी बला से हमने क्या करना इतना कमा के। देखिए जब औरतों के बिल तकाजे खत्म हो गए, क्रेडिट कार्ड के बिल खत्म, जेवरात के बेकार बिल खत्म हो गए, तो मर्दों ने किसके लिए कमाना है। और जब सच्ची सोच समझ आती है तो बच्चे भी कह देते हैं कि अबू हम हमें नहीं चाहिए ये सब कुछ। ऐसी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं कि बीवी बच्चों ने जब कह दिया कि हमें ये घर नहीं ऐसा चाहिए, हमें इसको छोड़ना, हमें ये नहीं चाहिए, तो मर्दों ने कहा नहीं तो ना से कल के बेचते आज बेच दो। जी इधर से किसी ने हाथ खड़ा किया था, पहले किसने खड़ा किया था आपको याद है किसी को? जी आपने सुनहरा जी। मेरे तो ध्यान में नहीं आया कि ऐसे उसका मोबाइल जो कि यहाँ पे बाजार तोहफा भरना भेजने के शौक में चोरी से आते हैं, और फिर हम उनसे बहुत खुश हो कि भाई मेरे आपका हाथ ये मोबाइल आ गया, ये मोबाइल आ गया, इस तरह की बहुत सी चीज़ें मतलब कंप्यूटर लैपटॉप ये सब चीज़ें हैं। फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि वो मोबाइल आप कहाँ से कौन ला रहे थे, लेकिन शौक में आदमी बेचने के लिए आते आप यकीन मैंने मैंने मेरे हस्बैंड से कहा कि आप है कि वो आदमी कहाँ से लेते जी। आपकी बात का खुलासा यह है कि कुछ चीजें सस्ती ले आते हैं मर्द घरों में, पता चलता है कि कोई चोरी की है, कोई किसने कम कीमत पे बेची, तो हम औरतों को इस पे भी नजर रखनी चाहिए कि हम ऐसा ना करें। बिल्कुल सही। इधर से कोई? जी आप प्लीज। मा आल मन इक्तसिद, चार लफ्ज है हदीस के, मा आल मन इक्तसिद, कभी मुफलिस नहीं होगा वो बंदा जिसने दरमियाना रवि रखी। आप अगर अपने आप पे लेके देखें, आप औरत है ना, तो आपको लगता है कि घर के हालात तंग है, खर्चा पूरा नहीं होता, आप चेक करें कि आपका अपना हाथ खुला है, आप कहीं ना कहीं फालतू खर्चती है। हो सकता है ग्रोसरी के अब आपके पास ना हो, लेकिन आपने कोई अपनी जात पे ऐसा खर्च कर लिया कि जो आपको बचाना था। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी मिसालें घरों में मौजूद होती हैं कि बेवा भी होती हैं औरतें, कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं, सारी जिंदगी सबर शुक्र, और ऐसी भी है माशाल्लाह अल्लाह जिंदगी दे सलामत दे, मर्द है कमाते खाते हैं, बीवी हर वक्त रोती है कि कमाते नहीं, देते नहीं, लेते नहीं, सिर्फ ये औरत के हाथ में होता है। अगर आपको 100 में घर चलाना है ना, आप चला सकते हैं, अगर आपको 500 में भी नहीं चलाना, 500 में भी नहीं चलाएंगे। इधर से आपकी बात हो गई, अब किसी और का मौका। जी देखिए जो हो जोके यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। मैं थोड़ा सा सबक की आयतों का नंबर चेंज करना चाहूंगी क्योंकि आज हम इधर ही रुकेंगे। तो हमारा आज का सबक आयत नंबर 62 से 66 तक है, सूरत बकरा 62 to 66। इंशाल्लाह ताला हम अपना अगला सबक जो है वो आयत नंबर 6 नेक्स्ट आयत से शुरू करेंगे। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक लीजिए 15 मिनट की, और इसके बाद वापस अपनी जगह पे आ जाएं, नमाज इंशाल्लाह इन पे होगी। ठीक है, और आप सब अपने कमेंट्स लिखें। अब कल तो बहुत थोड़े लोगों ने दिए, मुझे ये फील हुआ कि शायद ज़्यादा लोगों के पढ़ने लग गए, तो आपने सोचा कि पढ़ते लिखते ही नहीं है, या आप इधर मेरे से ले लीजिए, ऑनलाइन वाले भी माइक ऑन कर लें कैसे होगा, लेकिन उनको फिर भी आएगी ना।